की टीम जो है वो एक रुकी टीम से हार गई विच इज अमेरिका, तो साहब इसका क्रेडिट तो फिर CNN को ही जाता है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जिस आदमी के हाथ में है एंड ही इज द मिडल मैन एंड दैट इज मोहसिन नकवी। जनाब वजाहत, वेलकम टू साज़ो आवाज़, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
अस्सलाम वालेकुम जी,
अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया। दिस इज फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन हो रही है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूं कि आप मेरे साथ शामिल हुए हैं। मैं सर आज सबसे पहले जब मैं CNN पे पढ़ा कि आपने CNN के साथ भी रिपोर्टिंग की है, तो मेरे बहुत अच्छे भाई जो मेरे साथ प्रोग्राम में भी कई बार शामिल हुए बिफोर मोहसिन नकवी, ही वॉज द मैन हु वॉज वर्किंग फॉर CNN एंड एट द सेम पोजिशन मोहसिन नकवी वेंट देयर एंड देन, और आपने तो KPK खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के दरमियान भी रिपोर्टिंग की है। सो प्लीज डोंट टेक इट वेरी सीरियस। तो कल कलां को आप भी मोहसिन नकवी की जगह पे आ सकते हैं?
अल्लाह खैर करे जी, नहीं, आई एम फाइन वेयर आई एम, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन साहब बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हैं। वो टैलेंट मुझ में नहीं है, वो 48 घंटे के अंदर पोप से भी मिल सकते हैं, पीसीबी के होटल की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो चार टेंस बॉर्डर्स हैं जिसमें एक में आज तसादम हुआ है FC का, उसको भी देख सकते हैं, और साथ साथ हमें अमेरिका से क्रिकेट भी हरवा सकते हैं। तो ये जबरदस्त टैलेंट्स हैं, एक सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, मेरी इतनी औकात नहीं है।
बहुत शुक्रिया। और अभी आपने पोप का कहा, तो ये तीन खास कारिंदे थे जो चोजन लोग थे और जो ओपनली कहते हैं कि हमारा किसी पार्टी के साथ भी नहीं, बट इसके बावजूद सेनेट के मेंबर्स भी एज बन गए, जिसमें काकड़ साहब भी हैं, जिसमें ये भी हैं, एक तीसरा गो के उनसे लाइन मिलती नहीं है, मगर तीसरा शख्स भी यहां पे मौजूद था, मगर उसके बाद बाकी तो वापस लौट गए, मगर जनाब मोहसिन नकवी साहब फिर पोप साहब से मिलने के लिए गए, शायद सरगोधा के वाके की बिना पे। आप ऐसे मामलात होने ही ना दें अपने मुल्क में, लेट द पीपल गेट एजुकेशन, डोंट कीप देम इन द डार्कनेस, वो आप स्टोन एज के बीच में अपनी कौम को ना रखें। सर आज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी जो प्रोसिक्यूटर्स इमीडिएटली डिसमिस द ये म्यूटनी का जो आप लोगों के, आपका और शाहीन सहबाई का नाम है, जो आप दोनों तो बाकायदा जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा आदिल राजा साहब और मेहदी साहब का भी इसमें तस्करा है, तो सच का जिक्र करने, सच इतना कड़वा क्यों है? यानी अब जो बाइडन है, जो बाइडन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, मगर ये तो नहीं कि उन मीडिया उसको बंद कर दिया जाता है। हमारे जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके बारे में बहुत सारे हार्श फैक्ट्स को भी सामने लेके आ जाता है, मगर ये तो नहीं कि उन जर्नलिस्ट को बिहाइंड द बार कर दिया जाए, उनके गले को दबा दिया जाए, तो ये व्हाट दे आर शोइंग टू द इंटरनेशनल मीडिया?
I don't know what they're showing to international media, and I think it's unfair to make a comparison between Canadian media and American media and Pakistani media. Magar pehle to let's understand ke hua kya hai. Hua ye hai ke mere khilaf, Shahin Sabai sahab ke khilaf, Sabir Shakir sahab ke khilaf, aur Muhit Pirzada sahab ke khilaf. Halanki un dono ke naam nahi diye, magar idhar mention karna zaruri hai. Hamare khilaf ek parcha kata hai. Isme char journalists hain, hum charon journalists hain. और तीन जो है वो यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं ये साबिक फौजी हैं, कर्नल अकबर, मेजर आदिल और कैप्टन हैदर मेहदी। अब ये सात लोग हैं, इनके खिलाफ दो पर्चे कटे हैं, ठीक है, और ये आपकी आपकी ऑडियंस के लिए ये जरूरी है समझना कि पर्चों में क्या है, कब कटे हैं और अब क्यों फॉलो अप हो रहे हैं। ये पर्चे पिछले साल के 9 मई के एक महीने बाद कटे थे। ये दोनों पर्चे जो हैं वो प्रॉबली इंटेलिजेंस एजेंसीज के कवर जो एजेंट्स हैं या शेल्स हैं उन्होंने लिखवाए हैं। एक का नाम अला देता है, एक का नाम वला देता है, जो भी है ऐसे इनके नाम है, फेक एड्रेसेस से ये पर्चे कटवाए गए हैं। इन दोनों पर्चों की नौयत और भी एब्सर्ड है और मजाकिया है। इन दोनों पर्चों में लुबे लुबाब यह है कि जी अला देता भी ऐसी बात करता है, वला देता भी कहता है। जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुबह उठा 9 मई थी, मैंने डांशन मारे, दाढ़ी बनाई, नमाज पढ़ी, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैं चलता हुआ मेलोडी चौक पहुंच गया। एक बंदा कहता है मैं चलता हुआ पारा चौक पहुंच गया, जिधर ऑब्वियसली आईएसआई का दफ्तर है। मैंने चौक पे ये देखा कि जत्था एक खड़ा है और वो जत्था पाकिस्तान के झंडे जला रहा है और वो जत्था पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहा है। फिर मैं जत्थे के अंदर घुस गया क्योंकि मेरे अंदर जो मुहिबे वतन था वो जाग गया। फिर मैंने जत्थे के फोन छीने उनसे, उनके फोन छीन के मैं अपने भाई का या बहन का फोन नहीं ले सकता, मैं अपने मगर इस बंदे ने जत्थे के फोन ले लिए, उनके पासवर्ड्स क्रैक करके उसने ये भी देख लिया कि किस किस्म की खुफिया ऑर्डर्स शाहीन सिपाही और मुजाहद खान और मुहित पीरजादा और आदिल राजा और ये सब दे रहे हैं। फिर जी मैंने एक महीना वेट किया, फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन की खुद से, ये अल्लाह देता और वल्लाह देता फरमाते हैं अपनी FIR में, और मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुझे ये यकीन है कि ये सब जो हैं बैरूनी फॉरेन एजेंट हैं। ये एक मजाक है जो हुआ है, क्योंकि ये ना लोग असली हैं, ना इनके नाम असली हैं, ना इनके एड्रेसेस असली हैं, हमने चेक करवाए हैं, मगर ये FIR जो हैं वो असली हैं और ये FIR पिछले जून में चली हैं हमारे खिलाफ। अब एक साल गुजर गया, हम सात के साथों को इन एब्सेंशिया जो है प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट एनी फेयर ट्रायल, और उसके बाद अब एक एंटी टेररिज्म कोर्ट हमें म्यूटनी मतलब बगावत का पर्चा अब हमारे ऊपर लगा रहा है और जिरा कर रहा है, विटनेसेस को गैदर कर रहा है। ऑब्वियसली ये विटनेस भी फेक है। इसमें एक तो ये कॉमेडिक है, ये मजाकिया है, ये अपसर्ड है, ये अजीब है, मगर वो ये हमारी बात बहुत होगी। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो बाकी दीगर जो केसेस चल रहे हैं, हमारे इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, उनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, हमारे खिलाफ भी चल रहे हैं, वेरी गुड, बट इट्स नॉट अबाउट अस। आपका जो सवाल है वो बड़ा सवाल है, और वो जो बड़ा सवाल है वो ये है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ क्या कहना, दिस इज नॉट अबाउट इंटरनेशनल मीडिया, ये लोकल जो है हमारे ख्याल से, और इस पे मैं शाहीन मुईद साबिर एग्री करते हैं कि हम तो बाहर बैठे हैं, हमें क्या करेंगे, हमें कैसे रोक सकते हैं, हमारे खिलाफ इन्होंने कोई फायरवॉल लगा देनी है, यूट्यूब को इन्होंने ऑलरेडी अप्रोच किया है, ट्विटर को इन्होंने ऑलरेडी फ्लैग किया है, मेटा को, इंस्टाग्राम को ऑलरेडी इन्होंने जो कर सकते थे किया है, उन्होंने इन्हें घास नहीं डाली, क्योंकि वो जैसे भी हैं उनकी वो एक ऐसे मुल्क में है मतलब अमरीका में कि जिधर आप किसी थर्ड पार्टी का ऑर्डर लेके आप इधर काम नहीं कर सकते जब तक वैलिडिटी ना हो, तो उन्होंने तो घास नहीं डाली सोशल मीडिया कंपनीज ने, उसके ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर ये FIR लगाई, और हमें शक है कि ये FIR लगा के और हमें गलत ट्राई करके अब ये फिर एक गलत केस में हमें प्रॉबेबली सजा देंगे, किसी को पता नहीं 10 साल की मिलेगी, किसी को 15 साल की मिलेगी, किसी को 20 साल की मिलेगी, ऑलरेडी आदिल और हैदर मेहदी को कोर्ट मार्शल हो गए, और वो फिर लेके वो गलत इल्जाम लेके कि देखें जी ये दहशतगर्द हैं, बागी हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये फिर वो लेटरबाजी आगे भेजेंगे, गूगल को भेजेंगे, ये देखें जी फलाने एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुजाहद को बागी टेररिस्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया, ये होने वाला है, ये हमें अंदेशा है। और ये जो अंदेशा है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को भी है, हम उनसे और दीगर और अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे दीगर और जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं वो हमारे साथ हैं, और जो एक बैन अल-अक़वामी जो एक नैरेटिव है वो इनके साथ नहीं है, हमारे साथ हमारे जो फॉरेन दोस्त हैं वो हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर क्योंकि डिसअपॉइंटिंग ये लगता है मुझे कि लोकल जो हमारे दोस्त हैं वो ना हमारा जिक्र करते हैं, ना हमारे केस की, ना हमारे साथ जो हुआ है, हमारी फैमिलीज के साथ जो हुआ है, हमारे घरों पर रेड्स हुए हैं, हमारे अकाउंट्स बंद करने की, हमारी प्रॉपर्टियां जब्त करने की कोशिश की हैं और इन एब्सेंशिया की। अब इस सब में जो मुझे सबसे बड़ा जो अफसरदा मैं जो होता हूं वो मैं लोकल मीडिया पे होता हूं, वो भी बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उनको भी उठा लिया जाता है, उनके ऊपर भी जातियां होती हैं, मगर एक चीज वाजे है कि अगर उन्होंने इस इशू को फ्रॉम होम फ्रॉम द होम फ्रंट नहीं इस इशू को पुश किया, इस इशू को चैलेंज किया, तो वो दे आर नेक्स्ट, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं और वो और भी अंडर प्रेशर आएंगे, और हमें मिसाल बनाया जाएगा ताकि हबीब अकरम जैसे जो लोग हैं या मारिया मेमन जैसे जो लोग हैं या और भी दीगर हैं, देयर सो मेनी जर्नलिस्ट, सो मेनी ग्रेव जर्नलिस्ट बैक होम, इतने दलेर लोग हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट दुनिया के सबसे दलेर जर्नलिस्ट में शामिल होते हैं, उन्होंने शायद पिछली दो दहाइयों में जब से 9/11 हुआ है जब से शायद among the top 5 countries in the world to have given shahadats, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने शहादतें ली हैं तो दलेर तगड़े जर्नलिस्ट हैं मगर अगर हमारे साथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी प्रॉपर्टीज ले लेंगे बैंक अकाउंट बंद कर देंगे हमारे किसी रिश्तेदार को उठा देंगे हमारे घरों में क्लाशनकोफ पे डाल देंगे जो उन्होंने किया है तो वो तो इनके हथकंडे पुराने हैं मगर आई एम वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स माई कॉलीग्स माई ब्रदर्स माई सिस्टर्स माई पार्टनर्स माई फॉर्मर colleagues at all these great news organizations, Joe, they will be next. So this is really not about CNN. It's got nothing to do with CNN. It's got nothing to do with Justin Trudeau. This is really about scaring people back home. Ab jidhar aapke sawal baja hai ke Biden ke khilaf baat hoti hai to ya Justin Trudeau ke khilaf baat hoti hai to logon ko to utha liya nahi jata. Obviously nahi uthaya jata. बिकॉज तकाजा अलग है कानून साजी अलग है अकाउंटेबिलिटी अलग है ये जो कल क्रिकेट में हुआ है वही बंदा फॉरेन मिनिस्टर भी बना हुआ है पोप से मिल रहा है वही बंदा पीसीबी का चीफ भी बना हुआ है हालांकि उसने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया कॉलेज ड्रॉप आउट है वो ओहायो यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री नहीं खत्म की भी भाग गया था वही बंदा साबिक सीएनएन का प्रोड्यूसर उधर से पैसे बना के उसने अपने चैनल्स बनाए हैं और वो उसने उधर से दोस्तियां की और अब वो आपका फॉरेन मिनिस्टर भी है तकरीबन क्योंकि वो डिप्लोमेसी भी कर रहा है इंटीरियर मिनिस्टर तो है ही है अब काय की इंटीरियर मिनिस्ट्री आज जो चमन में हुआ है एफसी के ऊपर अटैक हुआ है और एफसी ने काउंटर अटैक किया दीगर लोगों को जख्मी किया है वेपन्स यूज किए हैं चमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है वेयर इज द इंटीरियर मिनिस्टर एफसी किसके तहत होती है एफसी फौज के तहत तो नहीं लगती एफसी तो इंटीरियर मिनिस्टर के तहत लगती है किधर है इंटीरियर मिनिस्टर हम न्यूयॉर्क में फिर रहा है शॉपिंग कर रहा है क्योंकि वो पीसीबी क्योंकि इधर वर्ल्ड कप हो रहा है तो ये अजीब सा एक तकाजा जो है ये एक कैप्चर हुआ हुआ है आपका मुल्क हाईजैक हुआ हुआ है और ये सब कहानियां जब खत्म होंगी जब ये हाईजैकर्स जो हैं ये वापस घर जाएंगे और वो जाना मुझे कम अज कम इस वक्त मुश्किल लग रहा है जब तक आप जैसे लोग मुझ जैसे लोग लोगों को ज्यादा इन्फॉर्म नहीं करेंगे और लोग बेहतर डिसीजन नहीं लेंगे मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने जो बंदा जिसने आपको कब्जा किया हो आपके ऊपर वो क्यों कब्जा छोड़ेगा जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे तो लड़ाई का वक्त आई एम सॉरी टू से मैं ये उकसा नहीं रहा किसी को लड़ाई का ये नहीं मतलब कि आप जलाओ घिराओ करें क्योंकि लड़ाई का मतलब है कम अज कम अपने राइट्स के लिए खड़े हों जो आपका हक बनता है जो अल्लाह ताला का भी ऑर्डर है और आईन का भी इसमें आपको हक दिया गया तो आप करें तो ये इस वक्त सिचुएशन है दिस इज नॉट अबाउट मी दिस इज नॉट अबाउट शाहीन दिस इज नॉट अबाउट इमरान दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान
वजाहत मैंने जो अभी आपके साथ जिक्र किया था ना सीएनएन के हवाले से तो रीजन बिकॉज मोहसिन नकवी से पहले वहां इम्तियाज गुल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीआरएसएस हैं ही वाज एट द सेम पोजीशन मगर इस इंसान ने कहां कॉम्प्रोमाइज किया कि ही इज बीन गिवन सो मच और आप लोगों के बारे में या किसी और के बारे में तो कहा जाता है या जैसे मैंने कर्नल इनाम के बारे में जिक्र किया लेफ्टिनेंट कर्नल इनाम ही ऑलवेज कम ऑन द शो अभी आपको पता ही है कि 5 नेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो मुकदमा चला उनको वकील भी नहीं प्रोवाइड किया गया था तो उनको मौत की सजा सुना दी गई थी निकाल के मतलब फिलहाल सजा उनकी मुअख्खर हो गई जिसमें क्रेडिट जाता है कर्नल इनाम साहब ने बेलॉस इसमें सर्विसेज अदा की हैं और जब मैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में बताना चाहती हूं तो मैं ये वो कहते हैं कि उन्होंने बाकियों के बारे में बात की न की अभी जैसे वजाहत कह रहे हैं मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस वक्त लिस्नर्स के लिए जो गाड़ियों में सुन रहे हैं आपके लिए खासतौर पर जिक्र करना चाहती हूं कि जनाब पीरजादा साहब का साबिर शाकिर साहब का इसमें तस्करा नहीं है दे आर ऑल्सो जर्नलिस्ट इन दो का खासतौर पर जिक्र है मगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने लिखा है बट द टू जर्नलिस्ट हैव जस्ट प्रैक्टिस्ड जर्नलिज्म और इन्होंने तो सिर्फ जर्नलिज्म किया और जर्नलिज्म क्या है कि उन हकायक से पर्दा उठाया जाए जो एक आम आदमी को जिनके बारे में इल्म होना चाहिए ये 9 मई के हवाले से ही जो वजाहत ने एक्सप्लेन किया कि 9 मई के हवाले से ही आज तक वजाहत अरशद शरीफ की तो FIR उसकी मां भी जिंदा है और उसके बच्चे भी हैं उसकी बीवी भी है वो FIR दर्ज ना कर सके तो ये असलम और अल्लाह दित्ता कहां से आ गए जिनकी यानी एनोनिमस लोग जो है उनकी FIR दर्ज हो रही है मगर जिनके साथ जाती तौर पे बीता है उनकी FIR दर्ज ही नहीं हो रही तो किस किस्म का कानून है जो आपने, तो आप तो एज ए जर्नलिस्ट भी आपने काम किया है, आपने तब जब आप थे पाकिस्तान में तो अपनी अदालतों को कैसा देखा था? क्या दिन ब दिन ये सिस्टम खराब हो रहा है? और अभी आपने जब जिक्र किया तो आपने सितंबर 11 के बाद का जिक्र किया, मैं खास तौर पे क्रेडिट देना चाहती हूँ उन जर्नलिस्ट को भी जो कि यही जियाउल हक के दौर में थे। आप सोचिए उनकी जबानों तक को कटवाया गया था, शॉक्स कोड़े लगवाए गए थे। खाविद नईम हाशमी मेरे साथ यहाँ आते रहे, मगर तब तो गिवन मार्शल लॉ था। अब जब आप प्रॉक्सी में काम कर रहे हैं या तो आप मार्शल लॉ लगा दें, मगर अगर आप प्रॉक्सीज के साथ आप अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं और आपने मुल्क में अंधा कानून बना दिया है, तो विच डायरेक्शन आर दे टेकिंग दिस कंट्री?
Well, to be very honest, it's a good question about Arshad and his family not being able to prosecute that case. It's quite sad, isn't it? Ke Allah deta and Walla deta can anonymous fake log jo hain wo asli FIR ki lagwa sakte hain, magar asli jo victim hain unko ek kacha parcha bhi nahi milta. This goes on to show ke jo jis kisam ka daku raj jise Imran Khan sahab kehte hain, मैं उनकी हर बात से एग्री नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, मैं अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करवाता चलूं कि मैं खुद अमरीका 5 साल पहले जब आया था, जब इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब की बहुत दोस्ती थी और बड़ा फेमस सेम पेज जो कहते थे, जिसमें आई एम सॉरी टू से मैं रिमाइंड करवाता चलूं हर एक को, भूलना नहीं चाहिए कि उस जमाने में इन्होंने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया था। ये जो आप सोच हाइब्रिड रेजीम, ये जो प्रॉक्सी रेजीम देख रहे हैं आप, कि पीछे से एक सिविलियन के कंधे पर रख के अपनी बंदूक फायर करो, तो ये तो यही कर रहे हैं। उस वक्त साल डेढ़ साल के लिए इमरान सेम पेज पे था, सेम पेज खराब हुआ तो हटा दिया, अब ये लोग सेम पेज पे हैं पीडीएम वाले, तो ये आपको यूज कर रहे हैं। और आप मतलब सिविलियंस को, शहरियों,
आप यूज हो रहे हैं
और आप यूज हो रहे हैं। और इमरान में और शहबाज में फ्रेंकली मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता। अगर मैं एक फौजी हूं, क्योंकि इमरान जब तक मेरा काम करेगा अपना कंधा देगा कि लो भी बंदूक रखो फायर करो, तो जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया, लोगों पे अटैक्स हुए, लोगों को इस्लामाबाद के मरगला पार्क में जर्नलिस्ट को गोली मारी गई, तो जिधर सब डिप्लोमैट्स वगैरह,
तूर के साथ हुआ था, मजीला जान के साथ हुआ था, हमिद मीर के साथ हुआ था,
तलत मीर की जॉब चली गई थी, हमिद मीर पे हुआ था,
तलत हुसैन बड़ा कमाल के सही है, तलत हुसैन यानी ही पेड अ गुड प्राइस हमारे साथ,
उसने फिर अपनी पूरी की ना प्राइस, उसने वो अपना बदला ले रहा है। बट एनीवेज, हमारा देखें जी, काम जो है, आपका जो सवाल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि क्या बात है, जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, मगर ये लोग इसे क्राइम समझते हैं। और ये लोग आप में, मतलब पाकिस्तान के शहरी में जो यूनिफॉर्म नहीं पहनता उसमें, वो कोई भी हो उसमें फर्क नहीं रखते, उसमें फर्क नहीं है। आज इनकी विजन में, इमरान में और शहबाज में कोई फर्क नहीं है, इनके साथ जो काम करेगा वो है। तो इसलिए मेरी इनको रिक्वेस्ट है कि मिडल मैन को लाना छोड़ें, अगर आपने वाकई रूल करना है तो मिडल मैन को। अब शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस भी दिया हुआ है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टिकट भी कटवाया हुआ है उसका, होटल भी स्टे उसका करवाना पड़ता है, राइट जी, पेंशन भी देनी पड़ती है, तनख्वाह है उसकी, पूरी कैबिनेट चलानी पड़ती है, मतलब कुछ कम से कम 4-5 हजार
खर्चा बचाओ जी, खर्चा बचाओ, डायरेक्ट मार्शल लॉ,
कुछ वो 4-5 हजार लोग जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करते हैं, उसमें स्टेनो भी है, सेक्रेटरी भी है, दर्जी भी है, वो कुक भी है, सबको घर भेजें, 4-5 हजार जो है उन लोगों को कहें यार तुम लोगों का काम ही नहीं है क्योंकि दफ्तर फजूल है, और खुद पिंडी से चलाएं। वैसे बिजली का बिल भी दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, फॉरन मिनिस्ट्री का, फॉरन मिनिस्ट्री का भी यही हाल है। हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी खानदान की है लगता है, क्योंकि क्रिकेट और इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्होंने अपने खास बंदे को दिया हुआ है जो हमने बात की, मगर जिधर जिधर लोग फजूल हैं, जिनमें जिनको आप नहीं समझते, ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, उनको फारिग करें। और मैं तो कहता हूं कि करोड़ों अरबों का खर्चा इस हुकूमत का बच जाएगा जब सब दफातर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसका नाम भी गलत रखा हुआ है, वो क्या नाम रखा हुआ है, वो शाहराह है पता नहीं क्या,
दस्तूर
वो बंद करें, शाहराह है दस्तूर, तो दस्तूर बदलें, दस्तूर बदलें प्लीज। और ये कम अज कम आपके, मैंने इस पर मैथ की हुई है, कम अज कम 1.5-2 लाख लोगों को अगर आप फारिग करें, फेडरल गवर्नमेंट को बंद करें और स्ट्रेट पिंडी से चलाएं, तो शायद पाकिस्तान बच जाए, क्योंकि हम भी क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा यार मार्शल लॉ लग चुका है, हमें चुप हो जाना चाहिए, मैं जाके ऊबर चला लूं, मेरे लिए बेहतर है, तो मैं भी कंफ्यूज नहीं रहूंगा, वैसे भी बचेंगे, इनकी भी जय जय होगी, वैसे इन्हें गालियां पड़ती हैं और पड़ेंगी, वैसे इनकी तारीफ जो लोग करते हैं और करेंगे, नॉट मच इज गोना चेंज बट मोर कोफिशिएंट हो जाएगा।
बहुत कमाल की आपने बात की। मुझे मैं एक हार्श क्वेश्चन है, क्या वजह है कि डॉक्टर्स डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं? कभी आप हॉस्पिटल में भी जाएं तो अगर कोई डॉक्टर आता है तो वो उसको फीस में या रिहाइश में, जर्नलिस्ट इतने बेहिस क्यों हैं? व्हाई दे आर सो पोलराइज्ड के हर दौर में मार पड़ी मगर दे डोंट स्टैंड बिहाइंड ईच अदर?
That's a very, very, very good question. It is a critical question. And it's a question jis pe maine bahut socha. I think ek to fark ye hai ki aapne doctors ki baat ki. Very, very good example. Lekin doctors aur lawyers bhi, by the way, Pakistan mein bhi ek dusre ke liye wakeel bhi khade ho jate hain. Pakistani ki misal dete hain, duniya mein nahi hote.
Yeah.
Pakistan mein doctors ki association hai aur wo khade ho jate hain aur
engineers bhi same way.
और लॉयर्स की एनजीओज बढ़ गए हैं, स्पेशली हमने जो देखा है ये इमरान खान के दौरानिए में जो एनजीओज बड़े,
नहीं सर इंजीनियर्स इंजीनियर्स
इंजीनियर्स, अच्छा इंजीनियर्स का मुझे इतना नहीं पता, मैंने नहीं सोचा, मगर ये जो दो मिसालें हैं ना, ये जो हैं डॉक्टर्स और लॉयर्स पाकिस्तान में शोर मचाते हैं जब ज्यादती होती है इनके साथ और यकजा हो जाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि इनमें एक फ्रेटर्निटी का बॉन्ड है जो मेंटोरशिप पे बेस्ड है। आप छोटा डॉक्टर हमेशा इंटर्नशिप करता है बड़े डॉक्टर के नीचे, वो खान यूनिवर्सिटी का हो, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का हो, या डाउ मेडिकल का हो, या हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी से आया हो, या कुहार्ट मेडिकल से आया हो, उसने काम करना है एक सीनियर डॉक्टर के तहत, एक स्पेशलिस्ट के तहत। सेम थिंग गोज विद लॉयर्स, आप हार्वर्ड के हों, ऑक्सफर्ड के हों, या आप एतजाज अहसन के पुत्र हों, या आप जो भी हों, इट्स इररेलेवेंट, आपको सुबह काला कोट काली टाई लगा के फाइलें पकड़ के बड़े लॉयर के नीचे लगना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं बोल सकते जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते और नीचे काम नहीं करते किसी बड़े लॉयर की। इसे ये एक अप्रेंटिसशिप और मेंटोरशिप पे, ये दोनों जो हैं औहदे, ये दोनों जबरदस्त दोनों प्रोफेशन हैं, ये दोनों मेंटोरशिप और अप्रेंटिसशिप पे, कि एक बड़ा या एक बड़ी एक छोटे या एक छोटी को ट्रेन करता है और छोटा ट्रेन होता है। जर्नलिज्म वाहिद ऐसा प्रोफेशन है दुनिया में मेरे ख्याल से जिसमें एक 21 साल का कब रिपोर्टर एक स्टोरी ब्रेक करता है जिससे शायद उसका एडिटर भी हिल सकता है, क्योंकि ये वाहिद प्रोफेशन है जो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड, ये वाहिद प्रोफेशन है जिधर एक एक इंटर्न जो है एक कॉलम एक सीनियर कॉपीराइट या कॉपी एडिटर से बेहतर कॉलम लिख सकती है अगर वो टैलेंटेड, क्योंकि ये वाहिद प्रोफेशन है दुनिया में जिधर हायरार्की नहीं है, बड़ा फ्लैट प्रोफेशन है ये, बिल्कुल फ्लैट है, इसमें ऊपर नीचे का यस एक्सपीरियंस लगता है, मगर दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड जिसकी जो मेन डिमांड है वो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन जो है कभी भी किसी वक्त भी इफ यू आर गुड आपको मिल सकती है, आप सीख सकते हैं, इसलिए प्रोफेशनल जेलसी बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, और तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने जो कुर्बानियां दी हैं। आप जा साहब की बात कर रही थी, बहुत पुरानी मिसालें हैं, जा को छोड़ें, हम खाली अपनी जनरेशन की बात करते हैं, 10-15 सालों में हमारे कितने कॉलीग्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, 13 जनाजों पे तो मैं खुद गया हूं, 97 शहादतें दी हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने 9/11 के बाद की। मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि वो मेरी जनरेशन है, मैंने 9/11 के दौरान और 9/11 के बाद मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, वो मेरा ईरा है, 15-20 साल लोगों को याद रहता है। तो 97 शहादतें, ये आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का नंबर है, ये तकरीबन 100 शहादतें दी हैं जी, 13 तो जनाजे मैंने अटेंड किए, 13 मैं अपनी जर्नलिस्ट के दोस्तों की शादियों पे नहीं गया, मैंने वलीमे नहीं खाए 13, मगर मैंने 13 जनाजे पढ़े हुए, ये एक सच है। सो उस हिसाब से द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं मुत्तहिद हैं, यूनियंस, एक जमाने में पीएफयूजे बड़ी यूनियन होती थी, आज पीएफयूजे की वेबसाइट नहीं चलती, तो प्रेस क्लब्स जो हैं वो बड़ा एक सेंटर होते थे, उधर बहस होती थी, वैसा होता था, दोस्तियां होती थी और ऐसी मेंटरशिप्स होती थी, वो सब खत्म हो गई हैं। डॉन की मैं मिसाल दे देता हूं, जिधर मैंने अपना शुरू किया, डॉन में 15 साल पहले एक ओहदा होता था जिसे कब रिपोर्टर कहा जाता था, कब रिपोर्टर वो नौजवान औरत या मर्द होता था या होती थी जो कॉलेज से पढ़ के या जो भी पढ़ के जो पहली बार कब मतलब शेर का बच्चा, राइट, वो कब रिपोर्टर होता था, उसे कब रिपोर्टर इसलिए डॉन में कहते थे, और ये पुरानी इनकी रिवायत है क्योंकि वो अलग अलग माओं का दूध पीता था, वो पॉलिटिकल डेस्क पे भी काम करता था, उधर से भी सीखता था जाके, वो इकोनॉमिक डेस्क पे भी काम करता था, उधर से भी सीखता था, सीखती थी, वो स्पोर्ट्स के लिए भी काम करता था, एडिटोरियल पेज के लिए भी काम करता था, मैगजीन सेक्शन के लिए भी काम करता था, उसे ट्रेन किया जाता था। एक कप जैसे पांच शेरनियों का दूध पीता और फिर शेर बनता है, तो वो उसे शेर बनाया जाता था। वो पोजीशन भी डॉन जैसे अखबार ने, जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड सबसे पुराना अखबार है अंग्रेजी का, डॉन जैसे अखबार को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बजट टाइट थे, क्योंकि इन्होंने आपके पैसे बंद किए हुए थे, मुशर्रफ साहब ने बंद किए आपके एड्स के पैसे, और सब हुकूमतों ने, आई एम सॉरी टू से, जरदारी साहब ने भी किए, नवाज शाह साहब ने भी किए, और
इमरान खान साहब के दौर में भी बंद हुए,
इमरान साहब ने भी किए, जी हाँ। तो ये स्ट्रक्चरली आपको वीकन किया जा रहा है, किया जा रहा है, आप ऐसे थे नहीं, आपको कर दिया गया। तो ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये मैं अयूब खान के लोग किसे सुनाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट अयूब खान, मैं तो अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूं। सो ये डिटेरियोरेशन जो है, इसको रोकना इस वक्त अब वक्त आ गया है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इमरान खान, आई डोंट एग्री विद हिम ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मगर एक चीज जो मैं एग्री करता हूं उसके साथ वो ये है कि ये आपके इस वक्त फंडामेंटल जो हकूक हैं, या आप जर्नलिस्ट हों, या आप स्टूडेंट हों, या आप जो भी हों, वकील हों, जज हों, एक आम शहरी हों, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस वक्त चोरी किए जा रहे हैं। ट्विटर बंद किया हुआ है, इंटरनेट आपका बंद किया हुआ है, प्राइवेसी आपकी खत्म होने वाली है। पिछले साल जो सबसे खौफनाक, बाय द वे, जो इन्होंने लॉ पास किया है, वो छोड़े इमरान को, छोड़े बातें, सबसे खौफनाक लॉ जो पास किया है वो ये किया है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका काम बैरून मुल्क दुश्मन पे नजर रखना है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी आपके घर में आके रात के अंधेरे में या दिन दहाड़े रेड कर सकती है,
अगर
कि आपका लैपटॉप या आपका स्मार्टफोन या आपका स्मार्ट टीवी या आपका आईपैड जो इस वक्त आपने रखा हुआ है, इसको प्रेमिस बना के कि भाई इस बंदी के पास आईपैड है, इस आईपैड में हमें शक है कि इस आईपैड में कोई गलत चीज है और हम रेड कर सकते हैं, और उसको आपसे आपकी प्राइवेसी और आपके राइट्स खाली एक स्मार्टफोन या एक आईपैड के तहत डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये कानून साजी हो चुकी है और इस पे लोग नहीं तंग होते लोग। और अभी आप जेब में ये लिख के रख लें मेरी बात, मैंने ये दो साल पहले बोला था कि ट्विटर बंद करेंगे, क्योंकि ट्विटर पे इमरान शोर मचा रहा था, हम शोर मचा रहे थे, एक इंटेलेक्चुअल एलीट है जो ट्विटर पे शोर मचा रही थी। अब लोग टिकटॉक पे भी शोर मचा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बैन करने की एक बार ऑलरेडी कोशिश की है, वो नेक्स्ट है। यूट्यूब पे शोर मचा रहे हैं, वो ऑलरेडी फायरवॉल्ड होने लग गया है। एंड आप यू आर वन सिग्नेचर और वन फोन कॉल अवे, सिग्नेचर तो फिर भी ऑफिशियल होता है, आई थिंक यू आर वन फोन कॉल अवे, इस मुल्क का जितना सोशल मीडिया है उस पर फायरवॉल लगेगी। ऑलरेडी अभी चाइना में बैठे हैं, चाइना तो इसका मास्टर है लोगों को एक्सेस बंद करने में, उधर से इंस्पायर होते हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप जो है वो इनका दूसरा जो दोस्त है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो नहीं चलाने देता, जो तीसरा इनका दोस्त है सऊदी, उससे भी इंस्पायर्ड हैं, वो भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है। तो इनके जो दोस्त है वो कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, तो इनकी जो कंपनी है आप देख लें, इनकी कंपनी कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो नहीं है, इनकी कंपनी जो है वो बादशाह हैं और वो डिक्टेटर्स हैं चाइना के और सऊदीया के और अरब अमारात के, वो शहजादे हैं और वो डिक्टेटर हैं जो जर्नलिस्ट के टोटे करते हैं बाथटब्स में।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्लियर बातचीत की, मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, हमारा मॉरल फाइबर वीक जरूर है, और पंजाब का तो खास तौर पे, मैं खुद पंजाब से हूं, आई एम फ्रॉम पंजाब, मैंने हमेशा ये बात कही कि जितने जंगजू फाते आए उनको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिली थी हमारे पख्तून एरिया में से,
खैबर तो जी हमारे खून में है, हमारे खून में
आगे आके हमने किया। अदर थिंग अबाउट जर्नलिस्ट आई वुड से कि ये खड़े नहीं होते बिकॉज मनी टॉक्स, पैसे पे इतनी बुरी तरह से खरीदा, और पाकिस्तान बाहसियत मुल्क गरीब मुल्क है, मगर पाकिस्तान के उमरा बहुत अमीर हैं, दे कैन बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अभी रिसेंटली वजाहत जब आप बात करें, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना आपकी हर बात, और मैं आपका बहुत ज्यादा और टाइम भी नहीं लेना चाहती, मलिक रियाज ने यही तो कहा कि मुझे जबरदस्ती जैसे वो आपके कैंडिडेट्स को जिसको बाहर निकालना होता था बाहर निकाल के एक पर्चा पढ़वा दिया जाता था तो ही रिफ्यूज्ड एंड देन उसको जो सजा दी गई तो उसने उसके अगले दिन फिर एक कागज छाप दिया जिसमें उसने कहा कि किस किस के जर्नलिस्ट को किस कितना प्लॉट और क्या क्या चीज उसने दी थी. तो आई थिंक इन पाकिस्तान जर्नलिज्म में थोड़ा सेल्फिशनेस भी आ गई. अभी आपने मेंटरशिप की बात की है, अप्रेंटिसशिप की बात की है, तो वैसे तो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं उनको उनकी भी मेंटर्स हैं, उनके भी आइडियल्स होते हैं उसके मुताबिक वो. दोज आर वेरी फ्यू एंड जेन्युइन जर्नलिस्ट. इज दैट राइट और रॉन्ग?
या बट आई मीन यू कांट डिबेट वन जर्नलिस्ट. जर्नलिज्म हैज चेंज्ड इफेक्टिवली. डिजिटल मीडिया हैज डिस्ट्रप्टेड जर्नलिज्म. टुडे समवन विद अ स्मार्टफोन एंड अ ट्विटर अकाउंट और अ यूट्यूब अकाउंट कैन रिपोर्ट लाइव ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम द राइट प्लेस एट द राइट टाइम and he or she or they will make great content. And wo jo ek baba baitha hai jiska 50 saal experience hai, jo dawn mein baith ke basement mein baith ke cigarette pee raha hai aur agli subah ka intezar kar raha hai, us babe ki jagah nahi rahi. So journalism disrupt hua hai, puri duniya mein journalism disrupt hua hai, Pakistan mein bhi hua hai. But I don't think ki just journalists or a combine hai, a combination hai. Aur isme ek aur cheez hui hai, wo journalism ki privatization hui hai. Sab mein जो सेठ साहिबान जो आए हैं, जो लोग चैनल ओन करते हैं, इनकी भी आप जरा सा इनका शजर नसर जो है आप डिबेट
करें. मगर वो तनख्वाहें भी तो नहीं ना देते. देखिए, इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. मेरे साथ जर्नलिस्ट एक पाकिस्तान से हैं, जलील रहमान साहब आजकल मेरे साथ हैं. तो आप यकीन कीजिएगा कि रोते हैं लोग कि तनख्वाहें तक तो वो देते
हैं. हमारे साथ ये हुआ हुआ है जी, हमारी महीनों उन्होंने तनख्वाहें बंद की हुई है. मैं ऐसे नहीं उठ के आया था, मेरी तनख्वाह बंद कर दी थी इन्होंने. मैं दुनिया न्यूज पे था, बाकियों को मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी. तो ये तो ऐसी हरकतें भी करते हैं कि कुछ लोगों को फिर देते हैं अपने फेवरेट्स को, कुछ को नहीं देते. मगर एनी वेज, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज वेरी सिंपल एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज वेरी बेसिक. एक जमाने में किसी ने पूछा, शेख रशीद साहब की जवानी थी उस दिन, शौकीन आदमी है, शेख रशीद से पूछा, शेख रशीद साहब आप शादी क्यों नहीं करते? तो शेख रशीद साहब ने लाल हवेली में बैठ के इंटरव्यू दिया था. कहते हैं कि यार जब अपना दूध मिलता हो बाजार में तो मज घर लाने की क्या जरूरत है.
वेरी सैड, वेरी
राइट. तो ये शेख रशीद ने कहा हुआ था. मगर इसी बात को आपने अभी नाम लिया मलिक रियाज का, तो मलिक रियाज ने भी यही बात की थी कि यार जर्नलिस्ट को कौन खरीदता है, अब तो हम चैनल्स को खरीदते हैं, चैनल्स के सेठों को खरीदते हैं. सो इट्स इसमें ये प्राइवेटाइजेशन भी जो है ये भी एक डेट्रीमेंटल चीज है. लोग कहते हैं प्राइवेट मीडिया. आई थिंक ये जो ग्रेट होप है, जो हमारे सबसे सीनियर जबरदस्त जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर्स, एक्सपर्ट्स, होस्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं कम अज कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो द बेस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम द डेज ऑफ पीटीवी. और पीटीवी को इन्होंने तबाह कर दिया है. एक पब्लिक चैनल को, एक पब्लिक नेटवर्क को, कनाडा में भी है पब्लिक नेटवर्क, जबरदस्त पब्लिक नेटवर्क है, अमेरिका में है, स्ट्रगल कर रहा है, इंग्लैंड का, बरतानिया का बीबीसी अभी भी सुना देता है अपने वजीर आजमों को और अपनी मलकाओं को और अपने बादशाहों को भी सुना देता है अगर उसके पास खबर हो. मगर इन्होंने पीटीवी को एक प्रोपेगेंडा आर्म बना दिया है. सबसे बड़ी मिसाल कल है, जो हालिया मिसाल है कि कल जब धजियां उड़ रही थी क्रिकेट में, तो पीटीवी जो है वो ट्विटर देखते हैं तो वो दिखा रहा था कि वो 1988 में हमने वो कौन सा ओलंपिक जीता था बॉक्सिंग का, और वो 1902 मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट था उस वक्त किसने कौन जैवलिन थ्रो जीता था. ये वही मुझे याद आता है जिस दिन बेनजीर शहीद हुई थी, 2007-08 की बात है. तो जिस दिन बेनजीर शहीद हुई थी उस दिन पीटीवी, उस वक्त मुझे याद है जियो ऐसे ब्रेक कर रहा था, मैं डॉन में था, डॉन ऐसे ब्रेक कर रहा था. मगर पीटीवी जो है, आप यार आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पता नहीं उस वक्त किधर थी, मगर मैं हमारे सामने तो सब स्क्रीन लगी हुई थी
इन कनाडा. और वेरी सैड कि पीटीवी ने तब मेरा
पीटीवी ने उस दिन नहीं पीटीवी ने उस दिन उस वक्त जब बेनजीर शहीद हुई, तो पीटीवी उस वक्त बलोचिस्तान की जो गरीब खवातीन है जो काजकारी करती हैं, जो काज से वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाता रहा. कैन यू इमेजिन?
वेरी सैड, वेरी सैड.
ये तो इन्होंने पीटीवी का ये हाल कर दिया, जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट निकले हैं. रेडियो पाकिस्तान का इन्होंने ये हाल कर दिया है. सो इट्स सैड. पहले खुद अपने इदारे खराब किए, अब फिर जो हुकूमत के इदारे हैं, अवाम के इदारे हैं, और अब जो बाकी निजी इदारे हैं उनको खराब कर रहे हैं. एंड यू राइट, मनी टॉक्स. बट एनी वेज, थैंक यू फॉर हैविंग.
आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ होने के लिए. एंड आई वी लुक फॉरवर्ड दिस इज अ प्रोग्राम जो कि लोग गाड़ियों में भी सुनते हुए चले जा रहे हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी और मैं आपके तवसुत से बार बार एक ही बात कहती हूं कि शख्सी मोहब्बतों में से निकलते हुए अपने आप को अपलिफ्ट कीजिएगा. हमारे लिए क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमने समझना है, मगर बिला वजह की तकलीफ भी मुनासिब नहीं है. वजह थैंक यू वेरी मच.
Thank you, Ji. Thank you for inviting me. Very kind. Assalamu alaikum. And kind to all you audiences in Canada. I miss Canada. I love Canada. And I'm going to be in Canada soon.
Look forward seeing you here. Thank you. Take care. Take care. वजह से हमने आपकी बातचीत कराई. मकसद ये था कि हम अपनी, मैं एक बड़ी अच्छी मुलाकात करवाने जा रही हूं और भी आपसे, हमारे चंद एक स्पॉन्सर्स विल कम बैक. गाड़ियों की चोरियों के लिहाज से बात करना चाह रही हूं आपसे. गाड़ियों की चोरियां हो रही हैं और पुलिस बड़े एक्टिवली काम कर रही है. आई हैव अ वंडरफुल पर्सन, ही इज प्रोफेशनली एन इंजीनियर. प्रोफेशनली ही इज एन इंजीनियर और आई विश कि मैं आपको दिखा सकूं. इंडिया में इन्होंने बाज काम ऐसे किए जिस पे इनका नाम इंडियन रिकॉर्ड में इनका नाम है कि ही इज द मैन हु इनिशिएटेड. और वो पेटेंट इन्होंने कराया कि नहीं कराया, क्यों नहीं किया, बलराज इनका नाम है. बुनियादी तौर पे ही इज एन इंजीनियर. बलराज भाई थैंक यू वेरी मच. आई एम सो सॉरी लेट हुए और मगर ये इंटरव्यू बड़ा अच्छा था. बहुत शुक्रिया कि वजाहत साहब ने हमें टाइम दिया, मगर हमने लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन भी देना होती है. आपकी इन्फॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपना तारुफ कराइए.
पहली गल तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद तुसी बुलाया, टाइम दिता.
तुसी सब तो पहले तुसी इंजीनियर हो, अपना तारफ कराओ. ए दसो तुसी इंडिया दे विच भी बहुत वड्डिया नामा दे नाल का, और मैं आपको यकीन मानिएगा मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, आई हैव सीन दैट बुक जिसमें इनका नाम, जो इन्होंने काम किए, और क्विकली बता दीजिए.
हाँ जी, मैं इंडिया में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से. तो वहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम ग्रेड 8 ऑनवर्ड आई वाज वेरी क्रिएटिव, आई डोंट नो व्हाई. सो सबसे पहले जो मेरे जहन में आइडिया आया था वो था जो शॉक साइकिल्स थे उस टाइम 88 में, वो उनमें शॉक अब्जॉर्बर नहीं थे. तो 8th ग्रेड में था जब मेरे ब्रेन में ये आइडिया आया. तो बाय 10th ग्रेड मैंने बाइसाइकिल बनाया जिसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर थे, फ्रंट और रियर दोनों. तो इंजीनियरिंग के दौरान मैंने उसको थोड़ा इम्प्रूव किया. तो जब मैं जॉब में गया मिंडा इंडस्ट्रीज में, मेरे कैंपस में मुझे जॉब मिली, तो वहां पे मेरे दिल्ली में गया तो वहां से पता चला भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ऐसे इंडिया में जो कि पहला काम होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो मैंने जब मैंने साइकिल बनाया था उस टाइम मैं अपने जो वहां पे सेक्रेटरीज थे इंडस्ट्रीज उनको दिखाया और भी जर्नलिस्ट थे उनको दिखाया. तो एक इंडिया में कंपनी है टीआई साइकिल्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्लेम किया भाई उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ड्यूल सस्पेंशन बाइसाइकिल बनाया. तो वो उनकी बात उन्होंने क्लेम किया 1997 में. तो मेरे को उस टाइम पता चला भाई मैंने 88-89 में इंडिया का फर्स्ट बाइसाइकिल बनाया था. तो उसके बेस पे मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि इंडिया में कोई भी काम नया होता है, कोई इन्वेंशन या कोई भी किसी भी फील्ड में कोई नई चीज होती है तो उसको वो उसके अंदर लॉक करते हैं. तो मेरे को उसके बेस पे मेरे को ये एंट्री मिली. तो इस ग्रुप में मेरे भाई, मेरा दोस्त हरिंदर पाल सिंह और फाइनेंसर भी थे उसके अंदर. ये यानी था भाई मैं अकेला था, इट वाज अ ग्रुप. जैसे छोटे होते आपका ग्रुप रहता है तो
कोई फाइनेंसर है, कोई मेंटर है.
आप अगर सुनेंगे ना वो कैसा टाइम था. आजकल तो दोस्ती डिफरेंट दूसरे पे है ना.
अच्छा, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दो बार नाम आया, यानी आपको अल्लाह ने जो दिमाग दिया है आपने नई क्रिएशन की जिसको एक्नॉलेज भी किया गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसमें आपका नाम है बलराज. अच्छा, कनाडा आके आपने जाहिर है जिंदगी को चेंज किया. यहां आने के बाद आपने एक तो घरों के हीटिंग कूलिंग के लिए आपने एक सिस्टम डेवलप किया, मगर गाड़ियों की चोरियां बहुत हो रही हैं. इतनी मैंने जाती तौर पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम देखा है, एक जगह पे नहीं दो जगह पे नाम देखा. एंड समबडी वांटेड टू स्टील हिज क्रेडिट, जो कि फिर नहीं छीनने दिया गया बिकॉज उस कंपनी ने बाद में किया था, इनका नाम उद्यमिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहले आया था, फिर उसका क्रेडिट इन्हीं को मिला, वो एक अलग बात है। बाज़ोकात हमारे और आपके दरमियान बहुत बड़े और अजीम लोग होते हैं मगर हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। एंड आई आज जब मैं बात करती हूं कि आज जब चोरियां हो रही हैं, आपने एक डिवाइस बनाई है कार थेफ्ट से मुतालिक, इज दैट राइट?
हाँ जी,
बताइए जरा उसके बारे
उसके बारे में।
वी मेड द रिकॉर्डिंग एज वेल, एक्चुअली भाई ने मेरे साथ 3:30 बजे आना था। हम ये दिखाते रहेंगे जो टेलीविजन पे, आपको आज शाम में भी आप ये सेगमेंट देखेंगे जिसमें मैं आवाज दिखाऊंगी। आप एक्सप्लेन।
हाँ जी एक्सप्लेन मैं करता हूँ। इसमें ये रोज ही कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, जी ये चोरी हो गया और इतना खर्चा बढ़ गया और इतनी इंश्योरेंस बढ़ गई, तो मेरे को कुछ अंदर से हो रहा था कुछ भाई, आई हैव टू डू समथिंग बींग यू कैन से सिटीजन ऑफ दिस कंट्री।
अगर इस तस्वीर को देख हाँ एक्सप्लेन करते चले जाए तो ये डिवाइस है, ये बहुत बड़ी डिवाइस है।
हाँ जी, ये इसमें
माइक के साथ
इट इज अ वर्किंग प्रोटोटाइप है ये। इसको अगर क्योंकि मेरी जो नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत लिमिटेड है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत बढ़ गया है, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसको दूसरे करने की, छोटा करने की, पर आई मेड द बेसिक प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप। ये कैसे चलता है, इसमें तीन आपके ऑप्शंस है। एक तो आप अपने फोन से इसको कंट्रोल कर सकते हो, और इसका एक रिमोट भी है उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और तीसरा इसकी और स्पेशलिटी क्या है भाई, अगर आपने कार जैसे ही आपका कार का इंजन बंद होता है तो उसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, इतनी टाइम बाद आपका वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। तो होगा क्या भाई, इस सिस्टम के एक्टिवेट होने से कोई भी बंदा अगर आपका सिग्नल भी चोरी करता है, जहां आप उसको की चाबी भी दे दी ना, तो स्टार्ट नहीं कर सकता गाड़ी,
वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर सकता
नहीं जी। और इसकी दूसरी ब्यूटी इसकी ये है भाई, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने ओईएम की जो वायरिंग है ना उसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया।
अच्छा, गाड़ी की
वायरिंग को टच नहीं किया।
जैसे बाज़ोकात होता है जो ब्रांड न्यू गाड़ियां होती है अंडर वारंटी होती हैं, अगर कहीं उनकी गाड़ी की को छेड़ दिया जाए तो आउट ऑफ वारंटी।
पीछे केस हुआ मेरे ख्याल से 6 महीने थोड़ी देर पहले, एक बंदे ने टोरंटो में नई लेक्सस खरीदी, नई लेक्सस, इट वॉज अराउंड आई थिंक 60-70 grand। तो उसने पहले भी उसकी गाड़ी चोरी हो रखी थी, तो उसने उसके अंदर ना सिस्टम लगवाया आफ्टर मार्केट, तो इट वो बोलते हैं वो एक रिकमेंडेड था मैन्युफैक्चरर और दूसरे द्वारा गाड़ी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, लेकिन उसके बाद उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद जब वो गया ओईएम के पास, लेक्सस के पास, वो उन्होंने उनकी वारंटी वॉइड कर दी, बोलते हैं आपने वायरिंग को टच किया है तो हम इसकी वारंटी दूसरी नहीं करेंगे, ऑनर नहीं करेंगे। तो उसकी जो कॉस्ट पड़ी उसको $20,000-$25,000 पड़ी नई गाड़ी पे।
अच्छा, अब आपकी जो ये डिवाइस है अगर कोई अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में लगा ले तो उसकी वारंटी
नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेट मी, ये सिस्टम मैंने क्यों बनाया, मैं बिकॉज मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज बहुत कम है, लिमिटेड है, मैंने ये सिस्टम बनाया है अपनी यूथ को, यहां पे जो क्रिएटिव माइंड है उनको ट्रिगर करने के लिए। अभी यहां पे हालात ऐसे हो रखे हैं कनाडा में ये चोरियों की वजह से, जैसे ना 83 की मूवी में आप देखते हैं जब जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच होता है तो उनके ड्रेसिंग रूम में क्या हालात, सुनसान बैठे रहते हैं, इतने बंदे आउट हो गए हैं, तो जब कपिल देव छक्का मार के वो बॉल उसके अंदर जाती है तो दे फील वी हां देयर इज समबडी, सो आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्सन। तो उस बंदे के लिए बनाया ये मैंने।
अच्छा, यानी समबडी कैन फाइनेंस इट एंड यू कैन मेक इट इन अ स्मॉलर,
दैट इज अ ऑप्शन टू, दैट कैन बी लुक्ड इनटू, पर मेरी ऑनेस्टली प्रायोरिटी अभी ये नहीं, मेरे पास 5 प्रोजेक्ट
है। मैंने आपसे कहा ना, इतना खूबसूरत आदमी है, इनको वहां जाना चाहिए, वो जिसमें वो 5 बंदे नहीं बैठे होते वो ओन कर लेते हैं, वो क्या नाम है उसका,
शार्क टैंक ऐसे कुछ बोलते हैं,
शार्क टैंक।
अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ,
अभी शार्क टैंक पे जाना,
अभी उस पर भी आता हूँ मैं। शार्क टैंक में क्या है, विद हिज ग्रेस उसने काबिलियत दी है डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया। वहां पे सिर्फ यहां पे शॉर्टेज किसकी है, पैसे की, ठीक है, उनको जो है आई हैव टू गेट द मेन, मे भी हो सकता है, लेकिन मेरे उसमें इतना दिया उसने मेरे को समझ, लेकिन वो एक वो जो ना चाबी है वो इग्निशन है वो नहीं है, तो वो उसके लिए मैं भाग रहा हूँ इधर उधर।
मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह से इनको शार्क टैंक से भी मुलाकात
हो जाए।
मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये जो डिवाइस है, से कोई XYZ है अपनी गाड़ी में ये डिवाइस लगवाना चाहे तो कैन दे?
No, I am not authorized and I will not do it. It is not recommended. I will not do it because कोई भी चीज जो OEM की गाड़ी में किसी ने लगाना है, इट हैज टू गो थ्रू रेगुलेशंस। ये तो जस्ट इट इज अ प्रोटोटाइप जस्ट टू थ्रो एन आइडिया टू समबडी ओके दिस कैन बी डन सो इजीली कम फॉरवर्ड टू डू
समबडी कैन ओन इट और समबडी
यस इट कैन
यू कैन बी अ हेल्प विद इट
यस 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 इन दैट केस आई कैन गाइड दैट ओके दिस इज व्हाट आई हैव डन
थिंक इसकी जो अफोर्डेबिलिटी होगी आजकल के दौर में चीज एक गाड़ी इतनी महंगी लो एक होती है कि कोई बहुत ही अफोर्डेबल जैसे एप्पल ने एक वो छोटा सा
बॉय नहीं बना दिया टैग बनाया जो
टैग बनाया
हाँ जी, हाँ जी।
लिखो जो टैग है इन करके लग दो
हाँ जी, हाँ जी।
वो गड्डी ट्रैक हो जाएगी
हाँ जी हाँ जी हाँ जी
है
हाँ जी
ते इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी
इसका ये तो मेरे ख्याल $100 का सामान है इसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग
आई विश के बराज भाई आप अपना नंबर दीजिएगा आई विश के मेरी अपनी कम्युनिटी में से कोई शार्क टैंक निकले या आपकी शार्क टैंक तक मुलाकात होनी चाहिए पहुंच होनी चाहिए ताकि एंड दिस डिवाइस इज यूजफुल फॉर द कार्स
जहां पे
दिस डिवाइस इज यूजफुल फॉर द प्रोविंस दिस डिवाइस इज यूजफुल फॉर द कंट्री
हाँ जी मेरा जो एम है व्हाट आई वांट टू डू मींस टू हेल्प दिस जो प्रॉब्लम है इट इज नॉट दैट बिग पर इसने सभी की नींदें खराब कर रखी है ठीक है सो वी हैव टू कम कलेक्टिव
एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनीज जो है इफ इतनी मैं देख रही थी कितना उन्होंने प्रीमियम अदा किया
बिलियंस में दे हैव
बिलियंस में जिसका नतीजा क्या होगा दे विल टेक
वी आर द
एंड यूजर तो बाकी लोगों की प्रीमियम बढ़ते चले जाएंगे
हाँ जी ठीक हाँ जी और इसमें मैं और एक
अप्रोच टू द गवर्नमेंट एज वेल
यू स्टील माय वर्ड सो दिस इज वेयर आई वाज कमिंग टू अभी हमारा नेशनल एक्शन प्लान इन्होंने गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने तैयार किया अभी हम हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम उसमें उसके अंदर जो मेरे को सबसे बड़ी वीकनेस लगी ना इन्होंने R&D के लिए कोई पैसा नहीं रखा किसी को बताया नहीं यस समबडी वी दिस इज द फंड देयर समबडी कम एंड कम फॉरवर्ड विद सम आइडिया और समथिंग ब्लू प्रिंट्स वी विल सपोर्ट यू ना फेडरल लेवल पे ना प्रोविंशियल लेवल पे ना म्युनिसिपल लेवल पे अभी मिस्टर पैट्रिक ब्राउन जी ने
उन्होंने ब्राउन से मिलिएगा इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं जाती तौर पे कैरोलिन पैरिश का आप तमाम लोगों को कहती हूँ आप उनकी क्रेडेंशियल्स पढ़ें शी इज अ वुमन हु विल डिलीवर अल्लाह जानता है शी इज अ वुमन हु विल डिलीवर विदाउट एनी थिंग मतलब मिसेस सागा के लोग उनको चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें कैरोलिन पैरिश एंड जितने लोगों से हमारी बात हुई है शी इज द वन हु इट वाज वन ऑफ हर प्रायोरिटी गाड़ियों की चोरियां अदरवाइज चोरियां और ये सिर्फ गाड़ियों की चोरियों तक मामला नहीं रहना ये मामला इससे भी बहुत आगे ऊपर जाएगा ब्रज भाई आप अपना नंबर दे सकते हैं
416-312-8466 312-8466 सो दिस इज फॉर क्वेश्चन इफ इंस्टॉलेशन आई विल नॉट डू इट ऑन आई एम सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड नो दैट शुड नॉट बी डन इट इज अगेंस्ट द लॉ बिकॉज the system when you are having such type of system it has to go through regulations inspections all that stuff
understand
yes
no aap is waqt chah rahe hain ki somebody should own this
yes if somebody is willing to this I am ready for more than ready to help support whatsoever
or somebody जो गवर्नमेंट है अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन कर
हाँ जी हाँ जी आई एम लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज दे शुड कम वी हैव PhD स्टूडेंट्स सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज सो दे शुड वर्क ऑन समथिंग लाइक दिस आई शुड दे शुड हैव वर्कड यहां तक हमें बैठे बात नहीं करनी चाहिए थी अभी जो ये मैं लेके आऊं इट इज नॉट माई जॉब आई एम डूइंग टू फॉर देम टू वेकअप वी हैव सो मच टैलेंट और इसके बाद और दूसरा रीजन क्यों लेके आया हूं मैं आप कमेंट्स देखते हैं ना दूसरे के अंदर जब ये ऐसा आर्टिकल आता है हाउ मच अंगेस्ट दे गो अस बेसिकली अंगेस्ट इंडियन पाकिस्तानीज और साउथ ईस्ट हाँ जी सो दिस इज आई हैव डन फॉर देम ऑल्सो मीन्स इट इज नॉट सो दैट यू आर अक्यूजिंग अस दैट वी आर द प्रॉब्लम बट वी आर द पीपल हु वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट
ब्रॉट द सोल्यूशन सो इसका मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट somebody can have this project और आप accordingly university में इस project को उस लिहाज से prepare करते हुए and I think province should adopt it
yes they must they are supposed to not must they are supposed to
आपने पुलिस में भी प्रेजेंटेशन दी
अभी नहीं मैं अभी किसी से बिकॉज यस नहीं दी नहीं बट इट आई कैन डू दैट
यू वॉन्ट टू डू इट
या वाई नॉट
चलिए मैं हरुण भाई से कहती हूँ, हरुण भाई आपको पकड़ूंगी कि आप ये प्रेजेंटेशन।
उन्होंने मेरे को बोला पहले से, मेरी उनसे बात हुई थी असल में। मैंने 6 महीने पहले जो लास्ट टाइम मैं आपके साथ आया था ना, तो मैंने उस टाइम प्लान किया, फिर उसके बाद मैं नहीं, चुप करके बैठ गया। मैं
आपको प्रेजेंटेशन पुलिस को भी दे देनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह। मुझे पता है कि पैट्रिक ब्राउन इज वेरी मतलब कंसर्न्ड, वेरी कंसर्न्ड के किस तरह होना चाहिए। ज़ाहरा बजट हर जगह पे प्रॉब्लम बना हुआ है।
मिस्टर पैट्रिक ब्राउन के बारे में मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने उनको ये भी चाहिए था, बिकॉज ही इज हिट हार्ड विद दिस प्रॉब्लम,
या
सो उनको ये चाहिए था भी, वो भी इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट करते हुए कम समबडी कम फॉरवर्ड, आई विल सपोर्ट हिम और हर हूएवर ही इज समबडी, so he will support that. That is the support somebody is looking for. People like me, there are many people like me that they need some support. So it has to come from somebody who can, you can say, empower somebody.
बिल्कुल
सही बात है। तो मैं उनको request करूँगा भाई, ऐसे भी वैसे भी innovation के लिए उनको अपने जो दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं, उनको they should sponsor और trigger करना चाहिए उनको।
हमारे एक इंडियन भाई हैं जो इनोवेशन का एक बहुत बड़ा इदारा यहाँ रन कर रहे हैं, एंड आई होप सो यू विल डेफिनेटली, पैट्रिक ब्राउन विल टेक यू देयर। बलराज भाई मेरे साथ हैं प्रोफेशनली, ही इज एन इंजीनियर, ही मेड दिस वंडरफुल डिवाइस, एंड जिसे कहते हैं ना मिरेकुलस, मोजाती डिवाइस है गाड़ियों की चोरियों को रोकने के लिए। सो दिस मीन अगर आपने चाबी हैंड ओवर भी कर दी तो भी वो अनलेस के वो आपको गाड़ी टक्कर मार के आके रोक लेते फिर ले जाते,
हाँ जी हाँ जी,
कुछ नहीं हो सकता। पर जो तुम चाबी दे भी दोगे तो नोबडी कैन ड्राइव योर कार। नो,
बेसिकली इट इज अ स्मार्ट इग्निशन स्विच, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल
स्मार्ट
इग्निशन स्विच। बेसिकली मोस्टली जेडे सिस्टम मिलते ना थानु सिर्फ एक या दो ने जेडे की तुसी कह सकते हैं इंजन दे बंद होने ते या ऑटो एक्टिवेट होंगे ने। दिस वन इज द वेरी सिंपलस्ट वन विच इज ऑटो एक्टिवेट। इंजन बंद होया यू कैन सेट द टाइम भी इन्ने टाइम बाद हो, क्योंकि कुछ कारा आदि ने जेदे च कि इंजन अपने रेड लाइट से शट डाउन हो जाता तो उस टाइम कितने ट्रिगर ना हो जाए, इस करके यू कैन सेट द टाइम भाई किन्ने देर बाद बंद हो, उस तो बाद थोड़ा हॉर्न बजेगा टू कन्फर्म दैट ओके द व्हीकल इज यू कैन से लॉक्ड। सो नाउ आइदर यू हैव टू ऑफ इट फ्रॉम द फोन और देर इज अ फोब ऑल्सो मीन्स रिमोट ते उत्थों तुसीं द्वारा फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। ते वो प्रोग्राम जड़ा है वो तुसीं किसी भी फोन ते डाउनलोड कर लो, कोई भी उसनू घर दे विच फैमिली मैंबर या कोई भी उसनू गड्डी नू ऑपरेट कर सकदा।
बलराज भाई ने इंशाल्लाह, मैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं एंड दिस डिवाइस कैन डेफिनेटली हेल्प एवरीबॉडी, एंड आई विश के भाई की मुलाकात जो है ना वो शार्क टैंक पे हो। मैं कहती हूँ सिर्फ ये कि इंसान बाज़ुकात अपनी जिंदगी के चक्करों के बीच में बच्चों को बड़ा करना है, जॉब पे जाना है, एंड उस हवाले से हम इतनी बुरी तरह से उस साइकिल के बीच में फंसे हुए हैं कि वी डोंट गो आउट। मगर आई विश यू ऑल द बेस्ट राजवी, थैंक यू। एनीथिंग नो नो, आप बताए आपको।
मैं जी तुम गल की ना चक्कर की, इस वे 5 प्रोजेक्ट चल रहे मेरे बिसाइड जॉब, सवेर तो जॉब तो आने के बाद 5 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे ने, दिस वाज वन ऑफ दैम। तो हूं थोड़ा जा चलो फिनिश हुआ, बाकी अजे चारा ते आई एम वर्किंग ऑन इट एंड देयर फॉर द कैनेडा एंड नो बॉडी हैज टच दैट फील्ड। 5 पेटेंट्स आई हैव अप्लाइड, प्रोविजनल पेटेंट्स आई हैव फाइल्ड।
मैं आपको बताया ना कि इनका नाम लिमिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इंडिया की लिमिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। 2 डिवाइसेज जो इन्होंने बनाई थी उसके हवाले से राजवे, थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा भी
आपने बुलाया और टाइम दिया और बात,
हम कोशिश करेंगे कि ये सेगमेंट आपको जब वो गाड़ी में डिस्प्ले दे रहे हैं हम वो भी आपके लिए प्ले करें, वो हम वीकेंड पे प्ले करेंगे आपके लिए। हमारे साथ शाह जी नासिर शाह साहब भी हमारे साथ हैं। ज़ाहरा वीकेंड पे टुकर शुकर खाने के लिए भी जाना है और टुकर शुकर खाने के लिए ओपन माइक कैफे पे जाना है। ओपन माइक कैफे पे जाना है तो नासिर शाह साहब हैं और आफताब इकबाल साहब, दोनों ने मिलके ये काविश की। शादी ब्याह मंगनी बर्थडे पार्टी, अगर आपने घर पे केटरिंग करनी है तो भी आप ऑर्डर दीजिएगा। शाह जी गुड मॉर्निंग।
हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
मैं हाले तक तो ठीक ही।
चलो वेरी गुड, ठीक ही होना चाहिए
जी। शाह जी 200 ओपन माइक कैफे से की हो रहे हैं?
ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਅੱਛਾ
ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀ ਤੋ ਮਾਜੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
100%
ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਕਾ
ਭੈੜੇ ਹੋ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੋ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ
ਜੀ ਅੱਛਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਮੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਯੇ ਹੈ ਵੀ ਟੇਸਟ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਵੋ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਹਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 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 ਔਰ ਜਬ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਤੋ ਟੇਸਟ 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 ਅਬ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਔਰ ਇਸ ਸਭਸੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਹੋਗਾ ਯੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਗਰੰਟੀ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਅਬ ਇਸਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਹਮ ਪੈਸੇ ਛੋੜਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਟਰਾਈ ਤੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਬਤਾਏ ਤੋ ਸਹੀ ਹਮੇ ਭਾਈ ਹਮਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਆਪਕੋ ਯੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਯਾ ਵੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਬ ਮੈਂ ਜਦ ਬੇਗਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਰ ਕੀ ਜੋ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਨਕੀ ਬੇਗਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਵੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਆਈ ਥੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਜੀ ਕੋ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਆ ਥਾ ਹਮੇ ਤੋ ਬਾਜੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਜੇ ਭਾਈ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਤਨੀ ਦੇ ਯੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇ ਦਮ ਹੈ ਯਾ ਬੰਦੇ ਮੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਯਾ ਬੰਦੇ ਕਾ ਟੇਸਟ ਸਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਰੈਫਰ ਕਰਤੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਟੇਸਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਜੋ ਵੀ ਆਰਫਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਹੈ ਯੇ ਉਨਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੇ ਐਨੀਵੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਲਾਹੌਰੀ ਚਰਗਾ ਔਰ ਗੋਡ ਕੜਾਈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਲਾਹੌਰੀ ਗੋਡ ਕੜਾਈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਮੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਨਾ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋ ਖਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਤੇ ਯਾਰ ਕੜਾਈ ਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਔਰ ਕੜਾਈ ਮੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਰਾਈ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਖ ਕਬਾਬ ਹੈ ਔਰ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਲਚੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਚੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪ ਆਗੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਏਗਾ ਉਸਕਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਪਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਜੇ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਜਾਏਂਗੇ ਈਵਨ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਸਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਦਾਲ ਕਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਪੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿਆ ਹਮਾਰਾ ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਮੀਨ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਦੋਨੋ ਦਿਨ ਆਪ ਜਾਏ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਸੰਡੇ ਕੋ ਮੈਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਤੋ ਆਪ ਮੈਚ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਏ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਪਾਏ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਮਾਜੇ ਭਾਈ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਖਾਏਗੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਸਸੇ ਅੱਛੇ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਿਹਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਕੋ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲਾਹੌਰੀ ਚਨੇ ਮਿਲੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਸੰਡੇ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਸੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੇ 416-526-6800 ਪੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਫਰਾਈਡੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਪੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਗਰੰਟੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਵਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੁਝੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਮ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਥ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਗਰੰਟੀ ਆਪਕੋ ਜੋ ਮੈਚ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਲਾਈਵ ਆਪ ਦੇਖੇ ਉਸ ਮੈਚ ਕੋ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਰੇ तो कोई भी अगर केटरिंग करनी है, केटरिंग स्पेशल जो हमारे पास है, बहुत सारे बैंकट हॉल हैं जितने भी माजे भाई, वो हमें ऑर्डर करते हैं और हमसे करवाते हैं 100 बंदे की, 500 बंदे की, 1000 बंदे तक हम केटरिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप ओपन माइक कैफे एंड कुजीन को कॉल करेंगे, मिनिमम ऑर्डर केटरिंग के लिए 30 लोगों का है, अगर 30 लोगों से ज्यादा है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट देखें, सबसे बड़ी बात होती है दो चीजों की, एक तो हम फ्रेश मीट यूज करते हैं, कोई फ्रोजन वगैरह नहीं करते, दूसरा जो टेस्ट की गारंटी करते हैं वो, तीसरा जो हम आपको वैरायटी दे रहे हैं इतनी ज्यादा वैरायटी, तो वो भी आपको हमें क्रेडिट जाता है। तो इसलिए नंबर बहुत इजी है, 416-526-6800 पे कॉल कर सकते हैं, और 1310 डंडास स्ट्रीट ईस्ट, बिल्कुल मिसिसागा में पड़ता है और डिक्सी एंड डंडास के कॉर्नर पे। जी मज भाई,
तो साहब पहुंचना है आपने कहां पर?
ओपन माइक कैफे,
एड्रेस बता दें,
1310 डंडास स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा, ये डिक्सी एंड डंडास के बिल्कुल कॉर्नर पे है,
और
लाजमी ट्राई जाइएगा, आज भी बुकिंग करवाएं, कल भी जाएं, आज शाम को भी जाएं, वेदर बहुत अच्छा है बाहर, आज भी जाकर ट्राई करें आप, दो आप सिर्फ ट्राई तो करें एक बार, फिर देखें तमाशा, फिर आप खुद ही कहेंगे यार इससे अच्छा फूड मैंने नहीं खाया, तो मुझे वो ज्यादा खुशी मिलेगी। जी।